भाषा प्रसार की भिन्न पद्धतियाँ। यहाँ यह प्रश्न अप्रासंगिक न होगा कि संसार के किस भाषा परिवार की किस शाखा के लोगों ने विश्व पैमाने पर अन्य भाषाओं का दमन सबसे अधिक किया है। अमेरिका के आदिवासी प्रशांत महासागर के द्वीप समूह, अफ्रीका के गढ़ समाज, वहाँ की नवोदित जातियाँ, इथियोपिया की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करने वाली अफ्रीकी जाति, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की जातियाँ, संसार में सैकड़ों भाषा परिवार है। इनमें एक परिवार है इंडो यूरोपियन, इस परिवार की एक शाखा है जर्मन। इसी शाखा के एंगल और सैक्सन कबीलों ने ब्रिटेन की केल्ट सभ्यता का विनाश किया और ब्रिटेन के भीतर इंग्लैंड की स्थापना की। इंग्लैंड वासी जर्मन शाखा के अंग्रेजी भाषी सामंतों और व्यापारियों ने अमेरिका की आदिवासी सभ्यताओं का नाश किया, वहां अपने उपनिवेश कायम किए। फिर अमेरिकी उपनिवेशों के अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेजों से लड़े। पिछले दो महायुद्धों में असंख्य जनों के संहार के लिए उन्हीं प्राचीन जर्मन कबीलों के आधुनिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार हैं। तीसरे महायुद्ध का खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं में से एक अमेरिकावासी समुदाय से है। भाषाओं के विश्व मानचित्र में यह जर्मन शाखा एक छोटी सी बूंद के समान है, किंतु विनाश और विध्वंस के कार्यों में वह अद्वितीय है। यहाँ जर्मन शाखा की भाषाएं बोलने वाले सामंतों और पूंजीपतियों को लक्ष्य करके ही यह बात कही जा रही है, पर क्या यह बात सही नहीं है कि गढ़ व्यवस्था के समय इनके पुरखों ने जिस बर्बरता का परिचय दिया था उसमें इन पूंजीपतियों ने चार चांद लगा दिए हैं। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का मुख्य केंद्र जर्मनी रहा है। जर्मन विद्वानों के लिए यह कल्पना करना अत्यंत कठिन था कि जैसे एंगल और सैक्सन कबीलों ने केल्ट सभ्यता का विनाश किया था, वैसे ही भारत में आर्यों ने द्रविड़ या कोल सभ्यता का नाश न किया होगा। अपने इतिहास के सांचे में उन्होंने दूसरों के इतिहास को फिट किया। जहां इस काम में कठिनाई हुई, वहां उन्होंने इतिहास के साथ पैर काटकर उसे अपने सांचे के अनुकूल बना लिया। विश्व पैमाने पर इस तरह के इतिहास की आवृत्ति कहाँ कहाँ हुई है। जैसे राष्ट्रीयता का एकमात्र आदर्श ब्रिटेन नहीं है, वैसे ही ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में भाषाओं और भाषा परिवारों का परस्पर संबंध समझने के लिए एक ही सांचा नहीं है, जिसमें जर्मन कबीलों ने पहले केल्ट सभ्यता का विनाश किया और फिर उनके वंशजों ने मूल अमेरिकी सभ्यता का नाश किया। पृष्ठ संख्या 26। जर्मन शाखा के बाद इस विनाश क्रिया में दूसरा स्थान लैटिन शाखा का है। इस शाखा के सामंतों और व्यापारियों ने यूरोप की केल्ट सभ्यता का दमन किया, जो केल्ट बच रहे उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जर्मन कबीलों से पहले यह लोग ब्रिटेन पहुँचे थे। ब्रिटेन और आयरलैंड की तरह यूरोप में भी केल्ट भाषाएं बोलने वाली जातियां फैली हुई थी। जर्मन कबीलों के लिए रोमन आक्रमणकारियों ने विजय अभियान का एक आदर्श कायम कर दिया था, किंतु जर्मन कबीलों से ये रोमन लोग अधिक सभ्य थे। इन्होंने दूसरे देशों को जीता तो उन्हें कुछ दिया भी, पर इस लैटिन शाखा के उत्तरकालीन वारिसों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जैसी लूट मचाई और जैसा नरसंहार किया, उसे देखते हुए जर्मन कबीलों के ही ज्यादा नजदीक थे। रोमन विजेताओं से वे काफी फासले पर थे। विश्व इतिहास से यह यदि लैटिन और जर्मन शाखाओं के हमलावरों को निकाल दिया जाए तो विश्व की जातियों और भाषाओं का मानचित्र ही बदल जाए। जो लोग यह समझते हैं कि किसी जाति के इतिहास का निर्माण मूलतः उसकी आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता है, वे इस बात पर ध्यान दें कि अर्थतंत्र के विचार से जो मंजिलें इन शाखाओं की जातियों ने पार की है, उन्हें दूसरों ने भी पार किया है। एशिया और यूरोप में तथा अन्यत्र वैसी गढ़ व्यवस्था रही है जैसी जर्मनी और इटली में थी। सामंती व्यवस्था और व्यापार का प्रसार एशिया और अफ्रीका के देशों में भी हुआ। औद्योगिक क्रांति अवश्य पहले यूरोप में हुई, परंतु उसके पहले गढ़ समाजों के जमाने में, सामंती व्यवस्था और व्यापार के जमाने में विभिन्न कबीलों और जातियों के इतिहास में इतना अंतर क्यों है? यूरोप में जैसे राष्ट्रीयता के लिए ब्रिटेन का विकल्प स्विट्जरलैंड है, वैसे ही सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में इटली का विकल्प यूनान है। यूनान की सभ्यता यूरोप के अन्य देशों की सभ्यता से पुरानी है। लैटिन भाषा, लैटिन साहित्य, रोमन लोगों का धर्म यूनानियों की भाषा, साहित्य और धर्म की प्रतिच्छवि है। एथेंस की सभ्यता मौलिक है, रोम की सभ्यता उसकी अनुकृति है। रोमन साम्राज्य के अभ्युदय से पहले अपने व्यापार और संस्कृति के बल पर यूनानियों से भूमध्य सागर के तटवर्ती सुदूर प्रदेशों को प्रभावित किया रोमनों द्वारा और मकदूनिया के लुटेरे सिकंदर द्वारा पराजित होने पर भी उनकी सभ्यता के केंद्र उत्तरी अफ्रीका में कायम रहे। पर इन यूनानियों ने फ्रांस या ब्रिटेन को जीतकर वहां अपनी भाषा का प्रभुत्व कायम नहीं किया। इससे परिणाम यह निकलता है कि सुदीर्घ गढ़ व्यवस्था काल में किसी भाषा कुल के लोग जो संस्कार अर्जित करते हैं, वे अन्य गढ़ समाजों के संस्कारों से भिन्न ही नहीं होते, वरन सामंती और पूंजीवादी व्यवस्थाओं में भी वे बहुत कुछ कायम रहते हैं। जर्मनी के बाद ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का केंद्र फ्रांस रहा है, जहां लैटिन पृष्ठ संख्या 27 भाषा बोली जाती है। रोमन सभ्यता के उत्तराधिकारी फ्रांसीसी विद्वानों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि जैसे रोमन विजेताओं ने केल्ट समाजों का विनाश किया था, वैसे ही आर्यों ने भारत में अनार्य समाजों का नाश किया होगा। किंतु लैटिन और जर्मन गढ़ समाजों के अलावा एक अन्य उदाहरण यूनान का भी है, उससे भारत की तुलना की जा सकती है। भाषाओं और भाषा परिवारों के परस्पर संबंधों का एक ही सांचा नहीं है, जिसका निर्माण जर्मन लैटिन शाखाओं के हमलावरों ने किया था। इन दूसरे सांचों को ध्यान में रखते हुए भारतीय भाषाओं के परस्पर संबंधों और भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।